अनजाने में महादेव ने मुझे उस लड़की से मिलवा दिया जिसकी चाहत मेरे दिल को थी और जिसकी ज़रूरत मेरी ज़िंदगी में थी। अब मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं खोऊंगा। तुमने कहा था ना कि अगर मैं चाहूंगा तो तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, तो मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर जाओ। कभी मुझे छोड़कर मत जाना, कभी भी नहीं। ईशान उठकर बैठ गया और पहली बार उसने कशिश की ओर कदम बढ़ाए। उसके चेहरे पर बिखरे बालों को समेटते हुए उसने अपने जज्बातों से सुलगते लबों को उसके माथे पर रख दिया। काफी वक्त से वो कश्मकश में था, पर कल की घटना ने सब साफ कर दिया था। मोहब्बत का एहसास भले अभी नहीं हुआ था, पर इतना समझ गया था कि अब कशिश से दूर जाकर जीना उसके लिए मुमकिन नहीं, और उसने सोच लिया था कि उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने देगा। ईशान ने अपने दिल के जज्बात जाहिर तो किए, पर कशिश उससे अनजान ही बनी रही। उसके लबों के स्पर्श पर वो नींद में कसमसाई थी और ईशान घबराकर पीछे हट गया था, पर कशिश नींद में कुनमुनाने के बाद वापस सो गई थी। सच में बच्ची ही थी वो, नींद में कैसे मुंह बना रही थी। ना चाहते हुए भी ईशान के लब मुस्कुरा उठे। उसने बड़े ही एहतियात के साथ कशिश को अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। उसे ब्लैंकेट से कवर करके वो अभी बाथरूम की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि चीख पुकार के साथ किसी के रोने की मध्यम आवाज़ उसके कानों से टकराई। इस आवाज़ को वो पल में पहचान गया। बचपन से सुनता आ रहा था तो भला कैसे ना पहचानता। उसकी भौहें सिकुड़कर आपस में जुड़ गईं, चेहरे के भाव बदल गए और आगे बढ़ते कदम ठिठक गए। अगले ही पल वो तेज़ी से गेट की ओर दौड़ा। जैसे ही दरवाज़ा खोला, आवाज़ और तेज़ हो गई। अब ईशान का दिल घबराने लगा। हड़बड़ी में वो सीढ़ियां फांदते हुए नीचे की ओर दौड़ा। उसके तेज़ी से दौड़ते कदम रामविलास जी और कौशल्या जी के कमरे के बाहर जाकर रुके। सामने का नज़ारा देखकर उसके कदम ठिठक गए। किसी अनहोनी के ख्याल से धड़कनें थम गईं, चेहरे का रंग उड़ गया। सामने पलंग पर रामविलास जी यूं लेटे थे जैसे देह में प्राण ही नहीं, और उनके पास बैठी कौशल्या जी उन्हें उठाने की कोशिश करते हुए बुरी तरह बिफर बिफर कर रो रही थीं। ये दृश्य देखकर पल भर ईशान सुन रह गया, फिर तुरंत ही तेज़ कदमों से उनकी ओर बढ़ गया। ईशान को वहां देखकर जैसे कौशल्या जी को उम्मीद की किरण नज़र आ गई थी। ईशू, देखो ना इन्हें क्या हो गया, हम इतनी देर से जगा रहे हैं पर आँख नहीं खोलते हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। वो रोते से सकते उससे सब बता रही थीं। ईशान ने उन्हें इतना कमज़ोर पड़ते पहले कभी नहीं देखा था। नाराज़गी अपनी जगह थी, पर वो उसकी बड़ी मम्मी थी। इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। उनकी हालत पर ईशान को दया हबे, और जिस मुंह से हमेशा उनके लिए कड़वे नाराज़गी भरे शब्द निकला करते थे, आज उन्हीं लबों से नरम बोल फूटे थे। आप रोना बंद कीजिए, कुछ नहीं होगा बड़े पापा को, हम देखते हैं क्या हुआ है। ईशान ने उन्हें सांत्वना दी, फिर आगे बढ़कर रामविलास जी के नाक के आगे दो उंगलियां लगाईं तो सांस बहुत धीमी चलती महसूस हुई, जैसे किसी भी पल थम जाएगी। आवाज़ें सुनकर बाकी सब भी धीरे धीरे वहां आ गए। कशिश भी आधी नींद में आंखों को मसलती हुई वहां पहुंची। ईशान ने बिना एक पल गवाए चाचा जी की मदद से बड़े पापा को जीप में लिटाया और आनन फानन में उन्हें लेकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। इमरजेंसी में उन्हें एडमिट किया गया और सीधे ओटी में लेकर जाया गया। हार्ट अटैक आया था उन्हें, क्रिटिकल केस था और उनकी हालत सीरियस थी। तुरंत ही फॉर्म्स भरे गए और बिल पेमेंट के साथ ऑपरेशन शुरू हो गया। शुभ्रा और शुभिका सो रही थीं, इसलिए उनके साथ कशिश को घर पर छोड़ दिया गया था। हालांकि वो आना चाहती थी, पर ईशान के कहने पर रुक गई। कौशल्या जी की हालत खराब थी, इसलिए चाची और रजनी उनके साथ ही आई थी। इस वक्त सब ओटी के बाहर मौजूद थे। सबके दिल में खौफ था। अचानक ऐसी मुसीबत उनके सर पर आई कि सब घबरा गए। मन ही मन सब बस प्रार्थना कर रहे थे कि ऑपरेशन सफल हो, उनकी जान बच जाए। कौशल्या जी अब भी रो रही थी। चाची और रजनी उन्हें सांत्वना दे रहे थे, उन्हें संभाल रहे थे। चाचा जी सरथा में एक ओर खड़े थे और ईशान बार बार ओटी के बंद दरवाजे को देख रहा था। घर से कशिश का फोन आ रहा था। वो अलग परेशान थी और घबरा रही थी, बार बार आने को बोल रही थी, पर ईशान ने उसे वहीं रुकने को कह दिया था। करीब चार घंटे बाद ओटी का दरवाजा खुला और डॉक्टर ने बाहर कदम रखा। सबसे पहले ईशान ने उनकी ओर कदम बढ़ाए और पीछे बाकी सब भी आ गए। डॉक्टर, कैसे हैं बड़े पापा?